लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कांस्टेंट लेबन्स एवं चटनागपुर में कार्तिक कलीसिया की शुरुआत पर चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि फादर लेबन्स के स्वस्थ होने की उम्मीद इलाज में असफल होने के कारण समाप्त हो चुकी थी और अब वे बहुत अधिक कमजोर हो गए थे। आज हम फादर लेबन्स का अपने परिवार वालों से भावभीनी अंतिम मुलाकात के बारे सुनेंगे, तो आइए आगे सुनते हैं।
मेरा ईश्वर तू है, जीवन सहारा।
दिन प्रतिदिन कमजोर होते फादर लेबन्स ने पश्चिम फ्लैंडर्स जाकर अंतिम बार अपने परिवार वालों से मुलाकात करने का निश्चय किया। यद्यपि वे भारत से एक साल पहले ही वापस आए थे और उनके रिश्तेदार आकर उनसे मिल चुके थे, किंतु वे अब तक अपने घर नहीं जा पाए थे। वे घर नहीं भी गए होते, किंतु गए क्योंकि उनकी बहन जूलिया गंभीर रूप से बीमार थी और वे उनसे मिलना चाहते थे। 25 अगस्त को शाम के समय वे अपने जन्म स्थान रोसलारे पहुंचे। परिवार वाले सुबह से ही उनके आने का इंतजार कर रहे थे और गाड़ी के साथ कई बार स्टेशन जा चुके थे, किंतु अब उनके आने की उम्मीद कम होने के कारण वे पैदल ही स्टेशन गए थे। फादर लेबन्स जब पहुंचे तो उनके पास गाड़ी नहीं थी, अतः दो व्यक्तियों ने सहारा देकर उन्हें घर लाया। वे धीरे धीरे उनके साथ चलते हुए घर पहुंचे। रास्ते पर जब उन्हें खांसी आ जाती थी तो वे रुक जाते थे और कुछ देर बाद वे आगे बढ़ते थे। उन्हें सबसे पहले उनके भतीजे जर्मेनुस लेबन्स का घर लिया गया। यही फादर लेबन्स के सभी रिश्तेदार और उनके पुराने मित्र उनसे मिलने आए थे। फेलिक्स लेबन्स की बेटी, जो उस समय बहुत छोटी थी, अपने कमजोर चाचा को प्रशंसित बनाए रखी। 30 साल बाद उन्होंने इसका जिक्र करते हुए अपने भाइयों को एक पत्र में लिखा, मैं अपने चाचा को अपनी नजरों के सामने रोसलारे में उनके भतीजे जर्मेनुस लेबन्स के घर में देखती हूँ। तुम दोनों छोटे थे, शायद यह जुलाई या उसके बाद का समय था, क्योंकि बगीचे में सतालू पक चुके थे। चाचा ठीक उसी तरह चश्मा पहने हुए थे जिस तरह वे फोटो में दिखाई देते हैं। मुलाकात और बातचीत करने के कुछ देर बाद वे उठे और कुछ दूर चलकर गलियारे में गए। गले में काला स्कर्फ लगाया तथा काला सुटान और स्टोल पहने। जब वे वहां से लौटे तो अपने बिस्तर पर चले गए। हम बगीचे में खेल रहे थे और इन सारी चीजों को दुखी मन से देख रहे थे कि चाचा बहुत अधिक कमजोर और पीड़ित लग रहे थे। माँ और पिताजी हमेशा उनके नजदीक रहे। चाचा बिस्तर पर बैठकर शक्तिहीन आवाज में बात करने लगे। हालांकि वे माता पिता और हमारे परिवार के सभी लोगों से पुनः एक बार मिलने के कारण खुश थे। उन्होंने हम प्रत्येक के माथे पर हाथ रखकर हमें आशीष दी और हमारे माता पिता से कहा, आपके बच्चों में से कुछ ऐसे हैं जो मेरे पद चिन्हों पर चलेंगे। रोसलारे से फादर लेबन्स को गाड़ी में बिठाकर सभी रिश्तेदारों के घर लिया गया, किंतु उन्हें मौसलेदे से दूर नहीं लिया गया क्योंकि वे गाड़ी के हिलाने या झटके को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस तरह उन्होंने अपनी बहन जूलिया से भी मुलाकात की। उनकी स्थिति उन्हें बहुत खराब लगी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन लुइसा से कहा, यदि वह ठीक नहीं होगी तो आधे साल के अंदर दफना दी जाएगी। तब कुछ देर मौन रहने के बाद कहा, मैं सोचता हूँ कि हम दोनों उस समय तक स्वर्ग में होंगे। तब एक चाची ने सहानुभूति के साथ कहा, कॉन्स्टेंट, यदि आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो निश्चय ही वहाँ अर्थात भारत नहीं लौट पाएंगे। क्या आप लौटना चाहेंगे? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चाची, यदि आपने खेत में पटसन बोया हो जो उस साल ठीक नहीं हुआ, तो क्या आप उसमें अगले साल कुछ नहीं बोएंगे? जब फादर लीबंस रामबेक से विदा हुए, उनके सभी भाई बहन एक साथ सड़क पर आए। लुइसा अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर उन्हें विदा करने आई। फादर लीबंस ने बच्चे को दुलारा और आशीष दी। तब लुइसा रोते हुए बोली, मुझे डर है कि आप इसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। कॉन्स्टेंट, यदि आप विदेश नहीं गए होते तो अधिक लंबी जिंदगी जी सकते थे। तब फादर लीबंस ने कहा, शायद ऐसा हो सकता था लुइसा, किंतु यह ईश्वर की इच्छा थी। तब बच्चे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यदि यह बच्चा सीखना चाहेगा तो क्या तुम उसे जाने दोगी या अपने ही पास रोक कर रखोगी? लुइसा ने कहा, नहीं, यदि यह ईश्वर की इच्छा होगी तो मैं इसे जाने दूंगी। लुइसा ने बाद में अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 13 सितंबर को फादर लीबंस लुबेन वापस लौट गए और उसके बाद उन्होंने कभी अपना कमरा नहीं छोड़ा। उन्हें मालूम हो गया था कि मृत्यु निकट है, अतः वे प्रार्थना के साथ इंतजार करने लगे। मनोरंजन के समय दुर्बल फादर लीबंस के साथ युवा पुरोहित आते थे। वे हमेशा मिशन के बारे उनसे बातें करते थे और उनसे कुछ नहीं छिपाया। उनसे मुलाकात करने वालों में से एक ने लिखा था कि वे अपनी बातों द्वारा अपनी आत्मा की कड़वाहट, निराशा और दुख को साफ किया। उन्हें अपने अतीत के कार्यों के प्रति कोई पछतावा नहीं था, न ही अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे। वे उन पुरोहितों से कहा करते थे कि आत्म त्याग के द्वारा ही आत्माओं को बचाया जा सकता है। यदि आप तैयार नहीं हैं कि आप आत्माओं को बचाने के लिए रौंदे जाएं, तब आप यहीं रहें, मिशन के लिए आगे न बढ़ें। यदि आप रूटीन के अनुसार खाने पीने और विश्राम के साथ नियमित जीवन जीना चाहते हैं, तो भारत में आपके लिए कोई काम नहीं है और आप यहीं रहें। इस विचार से भारत जाना कि लोग खुद आपके पास निर्धारित दिनों में आएंगे, तब आपकी लंबी यात्रा एक बड़ी मूर्खता होगी। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबंस एवं छोटानागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
जीवन सहारा मेरा ईश्वर तू है, जीवन सहारा। डूबती नैया का, डूबती नैया का तू है किनारा, मेरा ईश्वर सहारा, मेरा ईश्वर तू है जीवन सहारा।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका दृष्टिकोण, लेखिका है समता बोरेकर। कहते हैं जितना जियो खुलकर और खुश रहकर जियो, लेकिन आज के भाग दौड़ की जिंदगी में ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। हमारी व्यस्त और बदलती जीवन शैली ने बहुत से लोगों को चिड़चिड़ा बना दिया है, क्योंकि जब आप तनावग्रस्त रहते हैं तो आपका चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। तनाव होने पर व्यक्ति में अक्सर नकारात्मकता आने लगती है। यदि मनुष्य जीवन की घटनाओं को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करे तो वह एक सुखी जीवन जी सकता है, और सकारात्मक सोच और व्यवहार के साथ स्वाभाविक तौर पर होने वाली इस नकारात्मकता को भी हराया जा सकता है। पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं से घबराएं नहीं और सकारात्मक सोच रखें। किसी से अधिक अपेक्षा न रखें और मुस्कुराहट को अपनी आदत बनाएं। मुस्कुराहट चीजें आसान बना देती है। और हाँ, यदि आप खुशियों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करने में सफल होने पर रोज खुद को शाबाशी देना न भूलें। याद रखें, अपनी खुशियों और गमों के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें अपनी सारी जिम्मेदारी खुद पर डालना सीखनी चाहिए। ऐसा करके हम न सिर्फ अपने आज और कल को, बल्कि आने वाले हर दिन को बेहतर बना पाएंगे। आज के नाटक में मैडम सारिका ने जीवन को सफल बनाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया, आइए सुनते हैं समता भोरे करके लिखी नाटिका दृष्टिकोण।
चौहान जी,
हाजिर।
आज श्रुति मैडम फिर लेट।
अरे भाई, आएगी वही गरजती बरसती,
घर गिरस्ती का रोना लेकर।
अरे क्या कहें सर, सब औरतों को रोने के सिवा आता ही क्या है।
सच बात है, सच बात है, सच बात है।
आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई।
नाम लिया और हाजिर।
दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे ये तो मैं हूँ, कोई और होती ना तो चलती बनती सब छोड़ छाड़ के।
ले पानी पी ले, जरा सांस ले ले।
अरे हाँ सारिका, थैंक यू। सुबह से पानी तक नहीं पिया मैंने। अरे एक तो सुबह सुबह काम वाली बाई ने फोन पर कह दिया कि आज नहीं आऊंगी, और फिर वही सासू माता का नैतिक शिक्षा का पाठ, जल्दी उठा करो। हम तो सुबह 5 बजे उठ जाती थी, जरा घर को देखा करो। अरे कोई चीज जगह पे नहीं है, ये वो। अरे मशीन हूँ क्या मैं? अरे दो हाथों से क्या क्या करूँ?
धीरे 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 आराम से। अरे घर से तो तू यही सब झेल के आ रही है ना, क्लास का टाइम हो गया है, उसकी तैयारी नहीं करनी है क्या?
अरे भाई सुनिए, आज तो मीटिंग का दिन है सारिका मैडम, बच्चों को स्पोर्ट्स का पीरियड है, बच्चों का याद है ना, भूल गई शायद।
अरे वो सब छोड़िए सर, ये तो बताइए आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हैं?
चलिए मेरा मीटिंग का टाइम हो गया, मैं तो चला। ओके सर, बाय।
ओके ओके।
हद है भाई, न घर में चैन न स्कूल में, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। अरे सारिका कभी कभी तो यूं लगता है हम न हुए प्रेशर कुकर हो गए।
श्रुति ऐसा नहीं है, बस प्रेशर को मैनेज करना आना चाहिए। अब चले मीटिंग में।
ठीक है।
तो भाई देखिए, इस वीक की स्ट्रेटेजी तो हमने बना ली है। आज की मीटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले साल के हमारे अच्छे मैनेजमेंट के कारण इस साल भी इंटर स्कूल युवा उत्सव हमारे स्कूल में होना तय किया गया है। पिछली सफलता का सारा श्रेय सारिका मैडम को जाता है, और इसीलिए इस साल भी इवेंट की जिम्मेदारी मैं इन्हें ही सौंपता हूँ।
थैंक यू सर, थैंक यू
जी। सर सारिका जी से अच्छा तो कोई है ही नहीं ना, हम तो यहाँ घास काटने आते हैं।
जबान को लगाम दीजिए सर।
अरे जाने दो श्रुति, इधर आओ तुम। हेलो हेलो। चलो ठीक है, मैं देख लूंगी, बाय।
क्या हुआ, किसका फोन था?
अरे अतुल का था, उनके ऑफिस में हेड ऑफिस से इंस्पेक्शन पे लोग आए हुए हैं, तो वो आज बेटे को स्कूल से घर छोड़ने नहीं जा पाएंगे, यही कह रहे थे।
ओ अब देखा, ये लोग समझते हैं कि हमारे दो नहीं चार हाथ हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, बस ऑर्डर मारना आता है इन्हें। अरे हम लेडीज घर बाहर कैसे दौड़ती फिरती हैं चक्कर घिन्नी की तरह। अरे इन्हें क्या मालूम, कभी जरा खुद एडजस्ट नहीं कर सकते क्या?
हेलो हेलो, हाँ भैया नमस्ते। आज 3 बजे कुशल को स्टॉप से घर छोड़ दीजिएगा। और हाँ, घर में मम्मी जी से पूछ लेना कि उन्हें कोई काम तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते।
अरे वाह, अब ये कौन थे?
अरे क्या बताऊँ तुझे, एक पुराने परिचित ऑटो रिक्शा वाले हैं, जरूरत पड़ने में इन्हें बुला लेती हूँ।
अरे वाह, तेरे पास तो हर बात का हल है, तुझे कहाँ सास ससुर के टेंशन है।
अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्या मैंने तुम्हें बताया?
हाँ, तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं।
आज तो इवेंट प्लानिंग के कारण बहुत देर हो गई।
अरे रिपोर्ट भी तो तुम्हें 2 बार बनानी पड़ी। अरे ताज्जुब तो इस बात का है कि तुम चुड़ी कैसे नहीं। भाई सर पहले ही बता देते कि दूसरे स्कूल वाले भी प्लानिंग में रहेंगे तो तुम्हें डबल मेहनत तो करनी नहीं पड़ती ना, और समय भी बच जाता। अरे हद है यार, लोग भी जाने क्या क्या।
अरे श्रुति, इसमें चिढ़ने की क्या बात है, काम तो करना ही है। अब घर चल, मैंने तुम्हारा साइंस प्रोजेक्ट भी बना दिया है, घर से ले भी लेना।
अब आई हो? अरे समय क्या हो रहा है? अरे हमारी कोई परवाह वरवा है कि नहीं? आज अतुल के पापा की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, जानती हो तुम? अरे तुम दोनों तो ऑफिस जाते ही अपना फोन बंद कर देते हो। हाँ हाँ, यहाँ कोई जिया मरे तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अरे कुछ थोड़ा घर के।
मम्मी जी मीटिंग थी इसलिए फोन बंद करना पड़ा।
हाँ हाँ, और यहाँ कुछ हो जाता तो? अरे वो तो भला हो उस ऑटो वाले का जिसने दवाइयाँ ला दी, वरना आज तो बस भगवान ही भरोसे थे हम।
आंटी आंटी उसे
श्रुति ये ले लो तुम्हारी फाइल, कल मिलते हैं स्कूल में, ठीक है?
हेलो सारिका, कैसी हो?
एकदम बढ़िया।
अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी जॉइंट फैमिली में हो, और इतना शांत कैसे रह लेती हो भाई?
देखो प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, मगर हम हरदम चिढ़ते चिढ़ते कुड़ते कुड़ते रहेंगे तो भला नुकसान तो हमारा ही होगा ना उसमें। ये मेरा दृष्टिकोण है कि मैं प्रेशर में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के बजाय उसे सॉल्व करने में विश्वास रखती हूँ, समझी तू? देख श्रुति, किसी भी काम को शांति से करेगी ना तो सब काम समय पर होगा और अच्छे से होगा, ये तुमको समझना पड़ेगा। ऐसे कुड़ कुड़ के चिड़ चिड़ के तुम करोगी, गुस्से में काम करोगी, घर परिवार पर गुस्सा करोगी तो काम कैसे चलेगा? न तुम्हारा काम होगा, न घर वालों का तुम काम सही ढंग से कर पाओगी। इसलिए जरूरी है कि काम का बोझ है तो उसे शांति से करो तो काम समय पर हो जाएगा और घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सब लोग खुश रहेंगे तुमसे। खुशी से हंस के कोई काम करो तो जल्दी खत्म भी हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि हमने कोई काम किया, समझ गई?
हाँ सारिका, बात तो सही है। अरे मैं तो हर बात में चिढ़ती रहती हूँ, हर बात में गुस्सा करती हूँ, यहाँ का काम वहाँ टालूं, वहाँ का काम यहाँ टालूं। ये जो तुम्हारा दृष्टिकोण है इसने मुझे भी बहुत ही प्रेरित किया है, अब मैं भी चिढ़ने के बदले मैनेज करने की कोशिश किया करूंगी।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख पहले तूने कितनी गलती की, चिड़ चिड़ के कैसे गुस्से में रहती थी, अब तो तुम शांत हो गई हो ना, अब तो काम सारी खुशी से करोगी ना, तुम हंस के करोगी ना? अरे वाह।
दृष्टिकोण, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमित सिंह, समता बोरेकर, भवानी कोल और संतोष जोशी। इंदौर सत्य प्रकाशन की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।